मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज 7 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं ब्रजभूषण पांडे, आपका गांव है सरडीह, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। कुमार सत्यम राय नई दिल्ली से, अजय दहा जबलपुर मध्य प्रदेश से, और सूरज कुमार पाल आपका गांव है बारागांव, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं ट्रेड वार के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ जो दूसरी खबरें हैं उन पर एक निगाह मार लेते हैं। दोस्तों एक जो अखबारों में भी आप पाएंगे और यह अब बहुत ही प्रोमिनेंटली चर्चा के केंद्र में आ गया है, जो सच पूछिए तो थोड़ा सा चिंतनीय विषय भी है, और वह है इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह। ये एक बहुत आप समझ लीजिए कि एक दुखद विषय है। दुखद विषय इसलिए है क्योंकि जो चुनाव आयोग है आप उसे कह सकते हैं कि वह हमारे लोकतंत्र की गंगोत्री है। लोकतंत्र की गंगोत्री का मतलब यह हुआ कि जो पूरा का पूरा जो लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके केंद्र में होते हैं हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और ये जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, इनको चुनने की जो पूरी व्यवस्था करने वाला जो संस्थान है वह है इलेक्शन कमीशन। और इसीलिए हमारे संविधान में आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन को बहुत से ऐसी छूट दी गई हैं, उसका सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बिना किसी भय के और बिना किसी दबाव के बिल्कुल तटस्थ भाव से काम कर सके। अभी दुर्भाग्य से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कुछ निर्णय ऐसे हुए हैं जिसके कारण पब्लिक के दिमाग में, सच्चाई क्या है वो बाद में सामने आएगी, पब्लिक के दिमाग में कुछ संदेह होने लगे हैं, राइट? और वो संदेह कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से हैं, वो आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसी तरह के एक संदेह पर बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट किया है, मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूं। वो ये कि अभी इलेक्शन कमीशन ने एक निर्णय लिया, उस निर्णय के तहत उन्होंने किसी उम्मीदवार को क्लीन चिट दे दी। मैं जानबूझ करके उम्मीदवारों के नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमारा वो कंसर्न नहीं है। उनके अगेंस्ट में शिकायत की गई थी कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना। आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन 3 सदस्यीय है और उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। तो ये जो निर्णय लिया गया इसके बारे में वह 2-1 से लिया गया, यानी कि 2 कमिश्नर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं मान रहे थे लेकिन 1 कमिश्नर मान रहे थे। किसी तरह से यह बात मीडिया में आ गई कि 1 कमिश्नर इससे असहमत थे। उसको लेकर के फिर उस एडिटोरियल कमेंट में लिखा है कि कुछ आपसी विवाद हुए और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह की चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। इस तरह की बातें आई तो उसी पर फिर इकोनॉमिक टाइम्स ने एडिटोरियल कमेंट किया है कि क्यों बाहर नहीं आनी चाहिए, लोकतंत्र है, जनता चुनेगी तो जनता को यह जानने का हक है कि जो चुनाव आयोग है वो किस तरीके से चुनाव करा रहा है, तो इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बजाय, और वहां कहा जा रहा है कि नहीं ये चीजें गुप्त रहनी चाहिए। और फिर जब हम सूचना के अधिकार के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं और आप दूसरे क्षेत्रों में देखें कि चीजें कितनी ओपन हो रही हैं, पार्लियामेंट का डिस्कशन आप लाइव टीवी पर देख रहे हैं, रिजर्व बैंक के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कितनी जबरदस्त बात कही है और कहा है कि नहीं आप उन बैंकों के बारे में सारी जानकारियां दीजिए सूचना के अधिकार के तहत। और ऐसे समय में अगर इलेक्शन कमीशन यह निर्णय लेता है कि इस तरह की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए तो ये कह लीजिए कि वो जो समय जिस तरह से चल रहा है उसके अनुकूल नहीं है। और जब भी कोई चीज छिपाई जाती है तो वो संदेह को जन्म देती है। तो दोस्तों इसको लेकर के लगातार अब इलेक्शन कमीशन जो निर्णय ले रहा है उस पर संदेह होने लगा है लोगों का, और इसी को आधार बना करके आज आप करंट कंटेंट के तहत एक बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, ये आर्टिकल आपके पास रहना चाहिए। कई अखबारों से लेकर के इसे तैयार किया गया है और उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कि इसकी विश्वसनीयता और बढ़े तो इसके लिए संगठन के रूप में क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए, यानी कि जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उनका कैसे, उनकी नियुक्ति होनी चाहिए और कैसे तीनों चुनाव जो कमिश्नर हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं और की जानी चाहिए जिससे कि यह संगठन जनता का और अधिक विश्वास हासिल कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्तमान स्थिति को देखते हुए, इस पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। मित्रों, एक और खबर है, आपने सुनी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जो यौन उत्पीड़न का जो आरोप एक महिला ने लगाया था, उनके इन हाउस उसकी जांच पड़ताल हुई और उसमें यह पाया गया कि यह आरोप बिल्कुल गलत था और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्हें इससे मुक्त कर दिया गया है। एक छोटी सी ये खबर है। एक खबर रेडियो में आपने और सुनी होगी, कुछ दिनों पहले आपको मालूम है कि जो गोलान हाइट है उस गोलान हाइट पर जो इसराइल है उसका कब्जा स्वीकार कर लिया है अमेरिका ने, तो उसको लेकर के फिर से एक तनाव की स्थिति बन गई है। फिलिस्तीनी उस पर आक्रमण कर रहे हैं, उसके जवाब में फिर इसराइल उस पर आक्रमण कर रहा है। ये अब तो आपको इस तरह की छुटपुट छुटपुट घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी, एक तरह से एक नए किस्म की छुटपुट छुटपुट युद्ध की शुरुआत उस क्षेत्र में ट्रंप महोदय जी ने करवा दी है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है ट्रेड वार, राइट? यह विषय मैंने क्यों चुना है, आज का अखबार अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें देख पढ़ा है आपने कि किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे सीधे ट्रेड वार की धमकी दे दी है, ट्रेड वार की सीधी धमकी। और जैसे उन्होंने ट्रेड वार की धमकी दी वैसे ही दुनिया के जो शेयर मार्केट है वो धड़ाधड़ गिरने लगे। ऐसा क्यों हुआ, इस पर मैं अब आपसे थोड़ी बातें करने जा रहा हूं। देखिए, ट्रेड वार क्या है, असली में जो ग्लोबलाइजेशन की जो शुरुआत हुई है या उदारीकरण की जो शुरुआत हुई है एक प्रकार से संरक्षणवाद के वो खिलाफ है। संरक्षणवाद का मतलब है कि हर देश अपने यहां के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करता है। चलिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी जो भी बनाए, लेकिन उसकी एक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीति होती है वह यह होती है कि दूसरे देश से अगर कोई वस्तु उनके अपने देश में इंपोर्ट की जाएगी, आयात की जाएगी, तो उस पर हम टैक्स लगा देंगे, ज्यादा टैक्स लगा देंगे, इतना टैक्स लगा देंगे कि उनका सामान हमारे बाजार में आकर के महंगा हो जाएगा। किसकी तुलना में महंगा हो जाएगा, जो हमारे अपने उद्योग बना रहे हैं, ठीक है? तो स्वाभाविक है कि जो हमारे अपने उद्योग हैं उन्हीं के द्वारा बनाया गया सामान बिकेगा, बाहर का सामान नहीं बिकेगा। तो हमने अपने उद्योग को इस तरह से शुल्क में वृद्धि करके, आप कह लीजिए, प्रोटेक्ट कर दिया, राइट? असल में जो लिबरलाइजेशन था वो इसी के विरोध में था, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है कि दुनिया के जो बाजार हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाए, आप केवल अपने ही बाजार तक सीमित न रहें और पूरी की पूरी दुनिया का जो बाजार है वो कॉम्पिटेटिव हो जाए, प्रतिस्पर्धी हो जाए। जब दुनिया का बाजार प्रतिस्पर्धी हो जाएगा तो देखिए अब उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। उसका सीधा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो देश वस्तुओं का उत्पादन कम कीमत पर कर पा रहे किसी भी वजह से, उनका सामान दुनिया में ज्यादा बिकेगा। और चीन को इसमें महारत हासिल है। आज देखिए कि चीन जो इतनी बड़ी शक्ति बन पाया है दुनिया की, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही बन पाया है। वो चीजें जो बना रहा है, लोग देख करके भौचक्के हैं कि इतनी सस्ती चीजें ये बना कैसे रहा है। अमेरिका का इस बारे में देखिए एक आरोप है कि इतनी सस्ती ये चीजें बना क्यों रहा है। इसे आपको समझना चाहिए, बहुत कम अखबारों में ये बात शायद आपको पढ़ने को मिलेगी कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है। शुरुआत इस रूप में हुई है कि आप अगर अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका के जो बाजार है, ये मेरा अपना अनुभव है कि वो चीनी सामान से पटे पड़े हैं, चाइनीज गुड्स चाइनीज प्रोडक्ट। अमेरिका का ये कहना है कि ये जो चाइना इतना सस्ते कीमत पर चीजें बना पा रहा है उसका एक कारण है। कारण ये है कि वह अमेरिका के बौद्धिक संपदा कानून का उल्लंघन कर रहा है। बौद्धिक संपदा कानून क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज इन्वेंट की तो वो आपके नाम से पेटेंट हो गई। अगर आपके इस चीज का मैं इस्तेमाल करता हूं तो मुझे उस चीज के बदले में आपको कुछ कमीशन देना चाहिए। जैसे राइटर होते हैं ना, राइटर की किताब बिकती है तो उनको रॉयल्टी मिलती है। तो ठीक इसी तरह से अगर मेरे द्वारा इन्वेंटेड चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस फार्मूले को आप अपना रहे हैं, तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज मुझे दीजिए, क्योंकि उस पर मैंने खर्च किया है, वो मेरी एक बौद्धिक संपदा है, उस मेरी संपत्ति है। जैसे यदि आप मेरे मकान में रहने आ जाए तो किराया देंगे ना, तो मेरे लिए बौद्धिक ही मेरा मकान है, बौद्धिकता ही मेरा मकान है, तो मुझे उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए। अमेरिका का आरोप है कि चीन हमारे यहां से बहुत सी ऐसी चीजें चुरा चुरा कर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वह हमें उसकी रॉयल्टी नहीं दे रहा है। चूंकि उसे रॉयल्टी नहीं देनी पड़ रही है तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए वो चीजें सस्ती पड़ रही हैं, और इस कारण वो पूरी की पूरी दुनिया में छा गया है, अमेरिका में भी छा गया है, और अमेरिका का पूरा जो ट्रेड है वो नुकसान में हो गया, मतलब चीन के पक्ष में हो गया है। तो अमेरिका ने फिर शुरू की कि चीन से जो सामान आ रहा है उस पर वो टैक्स लगाना उसने शुरू किया, पिछले साल से लगभग शुरू हो गया। दोनों देशों की कई बार बैठक हो चुकी है इस समस्या के हल के लिए, लेकिन कोई हल इसका नहीं निकल पाया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे धमकी दे दी है इस बात को लेकर के, और इससे दुनिया के पूरे शेयर बाजार गिर गए हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेयर बाजार गिर गए इसका क्या, क्यों शेयर के बाजार गिरे। देखिए, जो कंपनी है वो शेयर, अब शेयर बाजार के बारे में तो मैं डिटेल में आपको यहां नहीं बता सकता क्योंकि उतना वक्त नहीं है। मैं मान करके चल रहा हूं कि शेयर मार्केट क्या होता है आप जानते होंगे, कभी अवसर रहा तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें शेयर बिक रहे हैं। ये शेयर किसके हैं? कंपनियों के शेयर हैं जो व्यापार कर रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके शेयर हैं। तो अगर ट्रेड वार शुरू होता है तो सीधी सी बात है कि जो वस्तु, जैसे चाइना है या भारत है, अपना सामान जो दुनिया के दूसरे देशों में भेज रहा है वहां नहीं भेज पाएगा, क्योंकि वो सब अपना टैक्स लगा करके हमारी चीजों को महंगा कर देंगे। चलिए हम भारत के संदर्भ में बात लें कि भारत एल्युमिनियम भेज रहा है, भारत स्टील भेज रहा है दूसरे देशों में। अब वो देश इस पर टैक्स लगा दे, बढ़ा दे, लगाते तो अभी भी है लेकिन एक सीमा के बाद वो बढ़ा दे, इतना बढ़ा दें कि हमारा स्टील एल्युमिनियम वहां जाकर के बहुत महंगा पड़े, तो हमारा क्यों मंगाएंगे? तो जब वो नहीं मंगाएंगे तो हमारे जो स्टील और एल्युमिनियम के यहां जो कारखाने हैं उनका उत्पादन घट जाएगा, जब उनका उत्पादन घट जाएगा तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, जब उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फिर ये बताइए कि क्या उनके शेयर के रेट कम नहीं होने चाहिए? अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि भी अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन शेयर मार्केट केवल अभी पर काम नहीं करता है। सच पूछे तो अभी पर काम करता ही नहीं, तो भविष्य पर काम करता है। शेयर मार्केट प्रेडिक्ट करता है कि आगे क्या हो सकता है और उसको वो अभी ही बुना लेता है। इसीलिए चूंकि इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया के बाजार पर पड़ने वाला है, तो इसी कारण पूरी दुनिया के शेयर मार्केट कल गिरे। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी है कि किस तरह से ट्रेड वार का रिलेशन शेयर मार्केट से है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। आज मैं आपको कुछ बहुत ही खूबसूरत न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। मित्रों, आप सब अपने अपने ढंग से देख लेंगे और इनमें से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी कोशिश होगी कि उसका हिंदी वर्जन मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: प्रीति शर्मा हिमाचल प्रदेश से, अनिल कुमार लखनऊ से, श्वेतारा चंपारण बिहार से, और लुभना डोंगरे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।